मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 17 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले कि मैं मुख्य विषय के रूप में आप सबको अपना शीर्षक बताऊं, मैं चाहूंगा कि पहले थोड़े से जो क्लास में स्टूडेंट जो आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए, अब तो कुछ भी दिन नहीं रह गए कहना चाहिए, उनसे थोड़ी सी बातें कर लूं। और मुझे यकीन है कि खासकर जो क्लास में नहीं आने वाले स्टूडेंट हैं वो बिना मन में किसी तरह का असंतोष या आक्रोश पाले अपने आप ही मुझे इस बात की अनुमति देंगे। फ्रेंड्स आप सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए होंगे। एक बात शुरू में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आप चलेंगे नहीं, अभी समय नहीं हुआ है कि आप अपने घर से प्रस्थान कर जाएंगे। हाँ, करने वाले होंगे तो एक बात आपको करनी चाहिए कि जो जो सामान आप अपने साथ लाना चाह रहे हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे उसी समय सब कर लेंगे, जो भी आपको याद आता है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप ये भी प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि आपको अपने तरीके को बदलना है और मस्तिष्क की प्रणाली को समझना है। और हम उसी का प्रैक्टिकल कर तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं दिमाग के साथ कुछ प्रयोग करा रहा हूं ताकि उन प्रयोगों पर विश्वास हो जाए आपको और फिर आप अपने दिमाग का उसी तरह से प्रयोग करने लगे, तब आप इसका देखें पाएंगे कि कितना अधिक लाभ आपको मिल रहा है। जो जो चीजें आपको याद आती हैं वो चीजें आप एक जगह इकट्ठे करते जाएं, और फिर जब चीजें इकट्ठी हो जाएं और आपको लगे कि हाँ अब मेरी चीजें पूरी हो गई हैं, तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये काम आपको खुद ही करना है, फिर आप अपनी चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लगाएं। जो भी आप अटैची ला रहे होंगे या बैग ला रहे होंगे उसमें सिस्टमेटिक तरीके से लगाएं, ये नहीं कि उसमें आप भर दें ठूसते चले जाएं, नॉट एट ऑल, है ना। दिमाग की प्रणाली को समझने की कोशिश कीजिए ताकि जब भी आपको कोई चीज चाहिए आप फट से उसमें से निकाल लें। और इसके बाद मित्रों देखिए आपकी यात्रा की शुरुआत होगी, क्योंकि अब मुझे इसके माध्यम से बात करने के लिए केवल दो ही दिन मिलेंगे, एक आज का है और एक कल का है, राइट। तो जब आप अपने घर से निकलेंगे तो अब आपको अपनी मानसिकता पर काम करना है। मानसिकता पहले कि अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि अरे बाप रे जर्नी में क्या होगा, कैसे मैं स्टेशन पहुंचूंगा, कहीं ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी, ट्रेन में क्या होगा, फिर मैं भोपाल में उतरूंगा, भोपाल में मैं कैसे जहां मुझे रुकने के लिए जगह दी गई है वहां कैसे पहुंचूंगा, और वहां से फिर जहां क्लासेस होंगी कैसे पहुंचूंगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं होगा और जो होगा वो अच्छा होगा मान करके चलिए। आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है, इस जर्नी को तनाव का कारण नहीं बनाना है, दबाव का कारण नहीं बनाना है। ये जर्नी है, जर्नी की भी एंजॉयमेंट होती है, या यूं कह लीजिए कि एंजॉयमेंट की भी जर्नी होती है। आप तो उस एंजॉयमेंट की जर्नी को समझना है और उसे पकड़ना है। जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं, दुनिया सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, भोपाल वैसे बहुत प्यारा शहर है, बहुत साफ सुथरा शहर है, मौसम भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कह सकता हूं कि 15 दिन जब आप रहेंगे तो हो सकता है कि भोपाल शहर से आपको मोहब्बत हो जाए, आई डोंट नो, मुझे तो हो गया था और इसीलिए मैंने भोपाल में बसने का हम लोगों ने निर्णय लिया, तो शायद ये घटना आपके साथ भी घटित हो जाए। लेकिन अभी आप बसने का निर्णय मत लीजिएगा क्योंकि अभी तो आपको सेटल होना है। खैर, तो मित्रों आप बड़े निश्चिंत खुश और हल्के मन से अपने घर से निकलें, और याद रखिए कि जो आपके रेलवे का टाइम हो, जो आपके बस का टाइम हो, उससे पर्याप्त अतिरिक्त समय लेके निकले। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 बजे ट्रेन पकड़नी है तो आपको चाहिए कि आप 4:30 बजे स्टेशन पहुंच जाएं, ये आपको करना होगा। कम से कम 15-20 मिनट पहले तो आपको पहुंच ही जाना, मैं पहुंचने का टाइम बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पर निकलेंगे कैलकुलेट करके तो हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस जाए, हो सकता है कि जिस गाड़ी से आप आ रहे हैं वो गाड़ी खराब हो जाए, और फिर जब समय के साथ एकदम इस तरह का तनाव का संबंध आपका बनेगा तो याद रखिए कि फिर आप अपने घर से चलकर स्टेशन तक या स्टैंड तक पहुंचने के मौके को, समय को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा तनाव में रहेंगे, अरे यार कहीं छूट ना जाए, अरे देरी हो रही है, कहीं भी आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है तो परेशानी होने लगेगी, अरे बाप रे अभी ट्रैफिक मिलना था, अरे यार इस रेड लाइट को भी अभी ही होना था। बेवजह के तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उस रेड लाइट को जो होना था हो रहा है, आपको ही अभी ही चलना था क्या, आप अपने ऊपर सोचिए। तो वेल इन एडवांस टाइम को लेकर के चलिए, अमेरिका में माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम 5 बजे है और अगर आप 5 बजे पहुंच जाते हैं तो कहा जाता है कि मिस्टर यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, कि आपको 10 मिनट की देरी हो गई है, मतलब आपको 10 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए था। यह वहां टाइम का कॉन्सेप्ट है, उसको आपको लेकर चलना है, राइट। इसके बाद आपकी ट्रेन आएगी, आपकी बस आएगी, इत्मीनान रखिए, परेशान मत होइए, वो ट्रेन रुकेगी, आपको छोड़कर नहीं जाएगी, वो तभी छोड़कर जाएगी जब आप उस ट्रेन को छोड़ेंगे। इत्मीनान से पहले उसमें से लोगों को उतरने दीजिए, बकायदे डब्बे डिस्प्ले किए हुए होते हैं कि कौन सा डब्बा किस जगह पर आएगा, उस जगह पर आप आराम से जाइए, स्टेशन को देखिए, अगर टाइम आप कुछ जल्दी पहुंच गए हैं तो वहां बुक स्टॉल्स होते हैं, वहां जाकर के किताबों की सूचियां देखिए, किताबें लगी हुई होती हैं, केवल पढ़िए, देखिए कौन सी किताब है, क्या टाइटल है, कैसा कवर पेज है, किसने लिखा है, वहां समय बिताइए। और जब ट्रेन आ जाए तो इत्मीनान से जो पहले उतरने वाले हैं उनको उतरने दीजिए और फिर आप इत्मीनान से चढ़िए, हड़बड़ाइए मत, ट्रेन छूटेगी नहीं, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पहली बार आप महसूस करेंगे कि यार ये जो 2 मिनट यहां भले ही ट्रेन रुकी हो, 2 मिनट के लिए रुकी हो, लेकिन 2 मिनट तो बहुत लंबा समय होता है, इतने सारे लोग उतर भी गए और इतने सारे लोग चढ़ गए, तब आपको पहली बार लगेगा यार हम सब समय समय की शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं होता, समय नहीं होता, 2 मिनट में तो ट्रेन में इतने सारे लोग चढ़ और उतर गए, तो 2 मिनट इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना लंबा होता है, आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा। दिमाग को शांत रखिए, संतुलित रखिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, मन में किसी तरह का भय मत लाइए कि अब ये ट्रेन आपको कहां लेकर जा रही है, जहां की आपने टिकट कटाई है ट्रेन वहीं आपको लेकर जाएगी, ट्रेन और कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद आप जाइए, आपका जहां रिजर्वेशन है वहां बैठिए, इत्मीनान से वहां बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठिए और देखिए कि वहां पहले से भी लोग बैठे हुए हैं। अब ये जो पहले से बैठे हुए लोग हैं ये यात्रा के आपके साथी हैं और सबसे प्रिय साथी होने चाहिए, ये यात्रा का आपका परिवार है, ये फैमिली है, इनके साथ आपके संबंध बड़े दोस्ताना के होने चाहिए। ये नहीं कि झुंझला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, यार ये तो कहां से आकर के बैठ गया, ये तो फैल करके बैठा हुआ है, नॉट एट ऑल। आप अपने मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए, चाहे जैसे भी हैं, यात्रा आपको अब इन्हीं के साथ करनी है, न तो आप अपना सीट नंबर बदल सकते और न उनसे कह सकते कि आप लोग बदतमीज हैं, आप दूसरी सीट पर जाइए, तो आप अपने को कंट्रोल में लाइए, आप अपने को दुरुस्त कीजिए और दोस्ताना संबंध स्थापित कीजिए, अपनी तरफ से विश कीजिए, बात शुरू कीजिए, नमस्कार, आप कहां से आए हुए हैं, क्या करते हैं, आपको संवाद की स्थिति कायम करनी है। याद रखिए कि इस जर्नी को आपको एक जर्नी ऑफ लर्निंग बनाना है, जर्नी ऑफ लर्निंग, कि इस जर्नी में आपको सीखना है और खिड़की से बाहर जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप ये मान करके चलिए कि आपको भूगोल का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे रहा है, कहीं फसलें दिखाई दे रही, कहीं पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं पशु चल रहे हैं, कहीं लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको भूगोल अपने जीवंत रूप में वहां दिखाई दे रहा है। और लोगों से ज्यादा प्रश्न कीजिए, इतना भी नहीं कि वो परेशान हो जाए, बड़े दोस्ताना अंदाज में प्रश्न कीजिए, उनसे अपने बारे में बताइए बहुत कम, अच्छे श्रोता बनिए जितने लोग हैं उन सबसे। और अगर आपके उस जगह पर कोई महिला है उनका पूरा सम्मान कीजिए, उनको अगर किसी मदद की जरूरत है उनको पूरी मदद दीजिए, अगर कोई महिला बच्चे के साथ है और उनके साथ कोई पुरुष नहीं है तो आपको चाहिए कि आपको उन्हें हर संभव आप मदद दें और उन्हें बकायदे अपनी शालीनता को दिखाते हुए निश्चिंत कर दें कि आप चिंता मत कीजिए, आपको जो भी जरूरत होगी आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर वृद्ध व्यक्ति हो तो आप उनका पूरा सहयोग कीजिए, पूरा सहयोग कीजिए, अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है तो पूरा उनका सहयोग कीजिए, सामान उतारने में सहयोग कीजिए, अगर उन्हें कोई चीज स्टेशन से चाहिए ट्रेन रुकने पर तो आप उन्हें ला करके दीजिए, पहले उनको दीजिए और फिर आप अपना कीजिए, राइट। जब आप अपना भोजन शुरू करेंगे खोलेंगे तो मुझे मालूम है कि आप इतना भोजन लेकर के नहीं चले हैं कि शेष 5 लोगों को भी आप खिला सकें, लेकिन एक बार पूछिए कि आप भोजन कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो नहीं कहेंगे कि हाँ हाँ हम करेंगे, क्योंकि वो भी लेकर के आए हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना अच्छा इंसान उनके कंपार्टमेंट में उनको मिल जाएगा, वो भी आपको ऑफर करेंगे कि आप हमारे साथ आइए, और आप देखिए कि फिर किस तरीके से एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक बहुत ही दोस्ताना संबंध आपका बन जाएगा। और इस तरीके से मित्रों आप अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय कीजिए, पूरी जर्नी को एंजॉय कीजिए, राइट। आज मैं आपकी जर्नी तक पहुंचाया है मैंने, अब कल से मैं आप भोपाल पहुंचने के बाद आप फिर क्या करेंगे कैसे करेंगे किस तरह की आपकी जर्नी होगी उसके बारे में मित्रों बातें करूंगा, क्योंकि अब वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे थोड़ी सी दूसरी भी बातें करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बातें मैंने कही हैं, मैं फिर से कहूंगा कि आप इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सुनें और अपने दिल और दिमाग में बसा लें और अपने एक्शन में फिर आगे उतारें भी। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के तहत मैं जो एग्रो क्लाइमेट जोन जो भारत का है, जो 15 कृषिगत जलवायु क्षेत्र हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं केवल इशारे के तौर पर ही आपको बता पाऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। खबरें भी मित्रों ज्यादा नहीं है। आपने देखा कि हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम बिल्कुल सभी को भोजन उपलब्ध करा देंगे। ये उन्होंने वायदा किया है और उसी के तहत उन्होंने 15 एग्रो क्लाइमेट जोन की बात कही है, 15 कृषिगत जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इस पर हम लोग अभी बातें करेंगे। आपने एक खबर सुनी, चैनल्स पर भी एक खबर थी कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो चूंकि ये थोड़ा सा हिस्ट्री का हिस्सा है और इलाहाबाद प्राचीन काल से भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध नगरी रही है, और इलाहाबाद तो एक ऐसा शहर है जो मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरी चेतना में बसा हुआ शहर है। इलाहाबाद, पता नहीं, इलाहाबाद कहते ही मेरे अंदर बड़ा विचित्र सा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि या तो मैं इलाहाबाद का हूं या इलाहाबाद मेरा है, या पता नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सिविल सर्विस मेंस का मुझे सेंटर भरना हुआ तो मैंने इलाहाबाद सेंटर भरा था, और सिविल सर्विस के एग्जाम देने के बाद मैं आधे दिन तक मैं इलाहाबाद का, खासकर जो सिविल लाइन एरिया है, पैदल पूरा घूमा था। मतलब इतना मेरे दिल के करीब है। और ये संयोग था कि मेरी पीएचडी की जो इंटरव्यू भी हुआ था वो इलाहाबाद में ही हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। जगदीश चंद्र गुप्त उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे हिंदी लिटरेचर के, उन्होंने मेरी पीएचडी का इंटरव्यू लिया था। तो कुछ ऐसा भी अनजाने ही रास्ता बन जाता है। खैर मित्रों, तो उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो थोड़ा सा आप इतिहास में चले जाइएगा, देखिएगा कि प्रयागराज क्या है, कैसा है। बस इतना ही। मित्रों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि 15 क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेट जोन। देखिए, एक तो सीधे सीधे जलवायु क्षेत्र है भारत के, और ये जलवायु क्षेत्र आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, है ना। जलवायु क्षेत्र के आधार पर वहां की वनस्पतियां वगैरह सब होती हैं, राइट। दूसरा है एग्रो क्लाइमेट जोन, यानी कि खेती के आधार पर खेत जो जलवायु हो सकती है उसको 15 भागों में बांटा गया है। यहां जो क्लास स्टूडेंट आ रहे हैं इस संदर्भ में हम लोग विस्तार से बात करते हैं, लेकिन यहां मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो गई तो आप यूं समझ लीजिए कि जो भारत है उसकी जो भूगोल का सिलेबस है उसके बहुत बड़े हिस्से की आपकी बेसिक तैयारी हो गई, या बहुत बड़े हिस्से की। देखिए, किसान महत्वपूर्ण है, कृषि महत्वपूर्ण है, उद्योग महत्वपूर्ण है, और उद्योग का संबंध कहीं ना कहीं आपके सीधे सीधे इस एग्रो क्लाइमेट जोन से है, क्योंकि उद्योग को कच्चा माल काफी कुछ इन एग्रीकल्चर से मिलता है। वहां की आर्थिक संभावनाएं कैसी हैं, दूसरे संसाधन कैसे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है मित्रों, ये किसी ज्योग्राफी वालों ने निर्धारित नहीं किए हैं, याद रखिए। ये एकेडमिक निर्धारण नहीं है, इसका निर्धारण किया हमारी प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने, क्योंकि योजना आयोग का काम था कि वो योजनाएं बनाए। तो कृषि की योजनाएं वो कैसे बनाए, तो उसने पूरे देश को 15 भागों में बांटा और उसमें दो मुख्य आधार रखे। एक तो वहां की जलवायु कैसी है और दूसरा वहां की जो सोशियो इकोनॉमी जो सिचुएशन है वो किस तरीके से है, उसके आधार पर उन्होंने 15 भागों में विभाजित किया है। मित्रों, 15 भागों के बारे में बता पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं यहां आपको नाम फटाफट बता देता हूं ताकि आपको तैयारी करने में सुविधा हो। पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, इसके बाद है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा है गंगा का निचला मैदान, चौथा है गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र, पांचवा है गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र, छठवां है सतलज यमुना का मैदान, सातवां है पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, इसके बाद है मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, फिर है पश्चिमी पठार व पहाड़ी क्षेत्र, फिर है दक्षिणी पठार व पहाड़ी क्षेत्र, फिर है पूर्वी मैदान और पहाड़ी तट, इसके बाद है पूर्वी मैदानी एवं पहाड़ी तट, समुद्री तट का मतलब है, फिर पश्चिमी मैदानी एवं तट, समुद्री घाट कह लीजिए आप, फिर गुजरात का मैदान और उसका पहाड़ी क्षेत्र, फिर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जहां रेगिस्तान आते हैं, और इसके बाद जो 15वां है वो हमारे जो आइलैंड है, द्वीपीय क्षेत्र कह लीजिए। तो इस तरह से 15 भागों में एग्रीकल्चर की दृष्टि से इसे विभाजित किया गया है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, माफी चाहूंगा कि उतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें थी आपको टॉपिक की दृष्टि से वो मैं आपको बता चुका हूं। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, जुल्फिकार जो चिरांग असम से हैं, और आशीष लाल। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।